नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे। पौलुस के एक युवा साथी और सहायक के रूप में कार्यरत तिमुथियुस को पौलुस की व्यक्तिगत सलाह है। इसका मुख्य विषय है धीरता। तिमुथियुस को परामर्श और प्रोत्साहन दिया गया है कि सताव और विरोध के होते हुए भी वो विश्वास योग्यता के साथ यीशु मसीह की गवाही देता रहे, सुसमाचार और पुराने नियम की सच्ची शिक्षाओं पर दृढ़ बना रहे और एक शिक्षक और प्रचारक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहे। तो आइए श्रोताओ, इस पत्री का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पिछले अध्ययन में हम पहला तिमुथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे थे और आज हम अपने अध्ययन को दूसरा तिमुथियुस की पत्री से आरंभ करेंगे और इसके परिचय को हम देखेंगे और इसके साथ में अध्याय एक और उसके पांच पद तक को देखेंगे। हमने तिमुथियुस को लिखे पौलुस के प्रथम पत्र का अध्ययन कर लिया है और अब हम दूसरी पत्री का अध्ययन आरंभ करते हैं। निम्नलिखित कैलेंडर घटनाओं का अनुमानित ब्यौरा है जो पौलुस की सेवा में तिमुथियुस को लिखे दूसरे पत्र के स्थान से हमें परिचित करवाता है। पौलुस ने यह पत्र लगभग सन 67 में लिखा था। लगभग सन 58 में पौलुस का यरूशलेम में बंदी बनाया जाना हुआ और लगभग सन 61 में पौलुस के रोम पहुंचने का अनुमानित समय था। 3 वर्ष का कारावास और विभिन्न शासकों के समक्ष उस पर अभियोग लगाए गए। तब हम देखते हैं लगभग सन 61 से 63 में पौलुस का प्रथम रोमी बंदीकरण हुआ। यह प्रेरितों के काम की पुस्तक में व्यक्त नहीं है क्योंकि वह पौलुस के प्रथम रोमी बंदीगृह के साथ ही समाप्त हो जाती है। लगभग सन 64 से 67 में पौलुस की बंदीगृह से मुक्ति और वृहद प्रचार के बारे देखते हैं। इस समय उसने मकिदुनिया से तिमुथियुस को प्रथम पत्र और तीतुस को भी पत्र लिखा। लगभग सन 67 में पौलुस को फिर बंदी बनाया गया और लगभग सन 68 में रोम में पौलुस का सिर काटा गया। कुछ समय पूर्व ही उसने तिमुथियुस को दूसरा पत्र लिखा था। 2 पद इस पत्री का विषय और शैली प्रस्तुत करते हैं, वे हैं दूसरा तिमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसका 15 पद। लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयास कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। और तब हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 4:2 में कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाहना दे और डांट और समझा। मेरे विचार में आप इस पत्र में एक शब्द पर सब शब्दों से अधिक बल दे सकते हैं और वह शब्द है विश्वास योग्य। यहां पर पहली बात हम देखते हैं कष्ट उठाने में विश्वास योग्य, यह अध्याय 1 में हम पाते हैं। दूसरा है सेवा में विश्वास योग्य, यह अध्याय 2 में है। और तीसरा है अविश्वास के वातावरण में भी विश्वास योग्य, यह अध्याय 3 उसके 4-5 में देखते हैं। चौथी बात है परित्याग में प्रभु अपने सेवकों का विश्वास योग्य, अध्याय 4 उसके 6-22 में हम इसे देखते हैं। मेरे मित्रों, मृत्यु शैया से कही हुई बात का महत्व बहुत अधिक होता है जिसे अन्य किसी बात के साथ जोड़ा नहीं जाता है। दूसरा तीमुथियुस का महत्व यही है। जी हाँ, यह पौलुस का अंतिम संदेश है। इसमें दुख का पोटली है जो अन्य पत्रियों में नहीं पाया गया है, तथापि उसमें विजय का अंश भी है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4:7 में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस ने अपना ही समाधि लेख लिखा है। यह भी है कि यह पौलुस का अंतिम पत्र है, इसलिए पौलुस इसमें अत्यधिक अपनापन दर्शाता है। इन 4 में 25 का संदर्भ है। दूसरा तीमुथियुस की इस पत्री में क्षितिज में एक अशुभ काला बादल दिखाई देता है, यह भावी विश्वास त्याग है। आज तो विश्वास का त्याग एक आंधी का रूप धारण कर चुका है। मेरे मित्रों, संसार में तो है ही, कलीसिया में भी यह आ चुका है। अब एक प्रश्न है, विश्वास त्याग से हमारा अभिप्राय क्या है? विवेस्टर के शब्दकोश में इसकी व्याख्या है, विश्वास के सिद्धांत का संपूर्ण त्याग। इसका अर्थ है कि विश्वास का त्याग अज्ञान के कारण नहीं है, यह एक झूठी शिक्षा है। विश्वास का त्याग जानबूझकर की गई चूक है, यह अपनी इच्छा से विश्वास का त्याग करना है। विश्वास का त्याग करने वाला सुसमाचार के सत्य को और विश्वास की शिक्षाओं से भली भांति परिचित होता है, परंतु वह जानबूझकर उसका त्याग करता है। दूसरा तीमुथियुस में पौलुस सुसमाचार के अंतिम परिणाम की चर्चा करता है। अंतिम फल यह नहीं होगा कि संपूर्ण मानव जाति मन फिराएगी, न ही इससे सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज का आगमन होगा। दूसरी ओर ऐसा विश्वास त्याग इस पृथ्वी पर होगा कि धर्म का नाम मिट जाएगा। युग के अंत में दो प्रकार का प्रस्थान होगा, एक कलीसिया का प्रस्थान अर्थात उठाया जाना, प्रभु स्वयं प्रधान स्वर्गदूत और तुरही के शब्द के साथ स्वर्ग से उतरेगा और मसीह में जितने भी मृतक हैं उनका पुनरुत्थान होगा और वे जो जीवित होंगे वे उनके साथ ऊपर हवा में उठा लिए जाएंगे। इसे हम 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:16-17 में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, विश्वासियों के उठा लिए जाने के बाद कलीसिया नाम का जो कवच रह जाएगा वह विश्वास से टल जाएगा, यह दूसरा प्रस्थान है, विश्वास से दूर हो जाना। इसके विषय प्रभु यीशु ने लूकार्चित सुसमाचार 18:8 में स्वयं कहा था, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। यह यूनानी भाषा का अनुवाद है और इसके उत्तर में आशा की जाती है कि नहीं कहा जाए, अतः इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। जब वह आएगा तब उसे पृथ्वी पर विश्वास देखने को नहीं मिलेगा, यह उत्तर आज के सामाजिक सुसमाचार से मेल नहीं खाता है। सामाजिक सुसमाचार समाज को परिवर्तित करके उसे बदलना चाहता है। ऐसे व्यर्थ के आशावादी दूसरा तीमुथियुस के शोकमग्न शब्दों को स्वीकार नहीं करते हैं। जी हाँ, वे तो मुझे बौद्धिक रूढ़िवादी भी कहते हैं। इसके उपरांत भी इतिहास के ठंडे और कठोर तथ्य और वर्तमान की घटनाएं पौलुस की बातों की सच्चाई को ही प्रकट करते हैं। आज हम धर्म त्याग के मध्य वास कर रहे हैं, जो पौलुस के शब्दों के अनुसार एक एक बात में अद्भुत ही लगती है। आज की कलीसिया भयानक धर्म त्याग के घेरे में है। विश्वासियों की देह जो एक सच्ची प्रत्यक्ष कलीसिया है, वह इससे प्रभावित नहीं है। मेरे मित्रों, प्रत्यक्ष कलीसिया आज भी उपस्थित है और मेरी मनोकामना है कि वह अधिक प्रत्यक्ष हो, स्पष्ट हो, वह अपने महिमान्वयन के प्रकाशन की ओर अग्रसर है, वह उठाए जाने की ओर बढ़ रही है। हमारे आज के युग में यह एक ढाढ़स बंधाने वाला विचार है। मेरे प्रियो, धर्म त्याग के खतरे के ही कारण पौलुस अन्य किसी भी पत्र की तुलना में इस पत्र में परमेश्वर के वचन पर अधिक बल देता है, जोर देता है। और सच तो यह है कि पौलुस और पत्रस दोनों ही यहाँ एक मत हैं। दोनों अपने अपने शोक गीत दूसरा तीमुथियुस और दूसरा पत्रस की पत्री में परमेश्वर के वचन पर अधिक जोर देते हैं। मेरे मित्रों, सुसमाचार एक महान सत्य पर आधारित है। मनुष्य की पूर्ण भ्रष्ट अवस्था, दूसरे शब्दों में मनुष्य एक भटका हुआ पापी है। एक आधुनिक शिक्षा विशेषज्ञ ने इसी बात को इस प्रकार से कहा है, शिक्षा यदि कहती है कि मनुष्य का नैतिक स्वभाव सुधार के योग्य है, रूढ़िवादी मसीही विश्वास मानता है कि मनुष्य का नैतिक स्वभाव भ्रष्ट और पतित है। शिक्षा में यह माना जाता है कि बाहरी कारक मनुष्य के विकास में सहायक होते हैं, परंतु रूढ़िवादी मसीही विश्वास के अनुसार परमेश्वर ही करता है, वरन मनुष्य का स्वभाव नए से बदलकर सुधारा नहीं जा सकता है। मेरे मित्रों, मनुष्य की दशा ऐसी है कि वह सिद्ध आज्ञाकारिता से उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि वह ऐसा कर नहीं पाता है, न ही वह अपूर्ण आज्ञाकारिता के द्वारा उद्धार पाता है, क्योंकि परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करता है। अतः एकमात्र समाधान है परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार, जो नीचे उतरकर प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के आधार पर उद्धार कराता है। प्रभु यीशु में विश्वास लाने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर हमारे पास परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार द्वारा परिवर्तित किए हुए मनुष्यों की प्रदर्शनी है। मेरे प्रियो, पापी मनुष्य को परमेश्वर के अनुग्रह का शुभ सुसमाचार सुनाने की अपेक्षा रूढ़िवादी से हटकर सोचने वाले तीन विभिन्न दिशाओं में चलते हैं। कुछ प्रचारकों के मुंह से हम प्रचलित मनोविज्ञान की बातें सुनते हैं, जैसे कैसे जय पाएं, या कैसे सकारात्मक सोच को रखें, या व्यवहारात्मक विचार कैसे अपने जीवन में लाएं। उनके अनुसार हम ऊपर की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यह प्रचलित मनोविज्ञान का विचार है और हमें कहीं पहुंचाता प्रतीत नहीं होता है। दूसरा क्षेत्र है सदाचार। वे एक छोटा सा मीठा सा सुसमाचार सुनाते हैं, जैसे बुराई से अच्छी भलाई है और वह आपको कम परेशानियों में डालती है। एक औसत मुक्त विचारक कलीसिया का चित्रण है। एक विनित मनुष्य विनित मनुष्यों के समूह के समक्ष खड़ा होकर उनसे निवेदन करता है कि वे और अधिक विनित बने, नम्र बने। इससे अधिक नीरस बात और क्या हो सकती है। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं है जब प्रभु यीशु लौदीकिया की कलीसिया को कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:15-16 में, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मेरे प्रियो, इससे तो किसी को भी पेट में परेशानी होगी। यही कारण है कि मैं मसीही जनों को झाग उगलने वाले विश्वासी भी कहता हूं, और उन्हें झाग ही चाहिए। एक और क्षेत्र है सामाजिक सुसमाचार। वे जातियों में अधिक अच्छे संबंध, शांति, सामाजिक न्याय और मसीही सामाजिक व्यवस्था का प्रचार करते हैं। यह मसीही समाजवाद है जो शुद्ध एवं सरल है। इसके विपरीत जब सच्चा सुसमाचार सुनाया जाता है और मनुष्य प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, तो सब आपस में भाई बन जाते हैं। अतः हमें जातियों में पारस्परिक संबंधों की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आप मनुष्यों को बलपूर्वक संगठित करके अच्छे संबंध नहीं बना सकते हैं। केवल परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार मनुष्य को मेरा भाई बनाता है। जब ऐसा होता है तब मनुष्य के रंग का कोई अंतर नहीं रह जाता है। मेरे प्रियो, मनुष्य की समस्याओं का समाधान केवल परमेश्वर के अनुग्रह के प्रचार से प्राप्त होगा। मार्टिन लूथर कहा करते थे कि हमें यह बोध होना चाहिए और यह बोध होना आवश्यक है कि परमेश्वर शून्य से कुछ उत्पन्न कर सकता है। जब तक मनुष्य नगण्य नहीं होगा, परमेश्वर उसके और उससे कुछ नहीं बना सकता। प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर का अनुग्रह ही मनुष्य के परिवर्तन और उद्धार का एकमात्र मार्ग है। इस पत्र की शिक्षा भी यही है, और इसी कारण हमें 2 तिमुथियुस के अध्ययन को पढ़ना और उसको सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए इसकी रूपरेखा को देखें। सुसमाचार के कष्ट 1 में है, और इसके अंतर्गत 3 छोटे भाग हैं। छोटा ए में हम देखेंगे प्रस्तावना 1:1-7 में, बी में लज्जित नहीं परंतु कष्टों के सहभागी 1:8-11 में, और सी में देखेंगे लज्जित नहीं परंतु आशावंत है 1:12-18 में। और तब हम देखते हैं दूसरे मुख्य भाग में सेवा में सक्रिय, यह 2 में है, और इसके छोटे भाग ए में देखते हैं पुत्र 2:1-2 में, बी में एक अच्छा योद्धा 2:3-4 में, और सी में देखते हैं खिलाड़ी 2:5, डी में देखेंगे किसान 2:6-14, ई में देखेंगे उत्तम कारीगर 2:15-19 में, एफ में देखेंगे पात्र 2:20-23 में, जी में देखेंगे सेवक 2:24-25 में। और अब हम आगे बढ़ेंगे और मुख्य तीसरे भाग में देखते हैं भावी धर्म त्याग, धर्म शास्त्र की प्रामाणिकता 3:1-5 में, और उसके जो छोटे भाग हैं ए में हम देखते हैं अंतिम दिनों में विश्वासियों की दशा 3:1-9, बी में अंतिम दिनों में धर्म शास्त्र की प्रामाणिकता 3:10-17 में, सी में देखते हैं अंतिम दिनों के निमित्त विशेष निर्देश 4:1-5 में, और तब हम चौथे मुख्य भाग में आते हैं प्रभु की संगति और प्रभु द्वारा संगति 4:6-22 में। और अब हम इसके दो छोटे भाग देखते हैं ए पौलुस की मरण शया से गवाही 4:6-8 में, बी अंतिम वचन अध्याय 4:9-22 पद में प्रभु मेरा सहायक रहा है। मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ करके देखेंगे अध्याय 1 जिसका विषय है सुसमाचार के कष्ट। प्रस्तावना में हम देखते हैं 2 तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। पौलुस परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। आपको याद होगा और आप स्मरण करें कि अपने प्रथम पत्र में उसने लिखा था 1 तिमोथियुस 1 अध्याय उसके 1 पद में, मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित। हमने देखा है कि परमेश्वर की आज्ञाएं उसकी इच्छा प्रकट करती हैं, परंतु वे परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा नहीं है। यहां वह कहता है जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। आप इस प्रतिज्ञा को क्या मानते हैं? आप उसे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं? अनंत जीवन पाने का यही एक मार्ग है। वह आपको अनंत जीवन दान में देता है। वह किसी से दान तभी ग्रहण करता है जब आप देने वाले पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार आप अनंत जीवन भी देने वाले पर विश्वास करके ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन देता है क्योंकि आप उस पर उद्धारकर्ता होने का विश्वास करते हैं। उसने आपके पापों का दंड चुकाया है। जी हाँ, आपके विश्वास और उस पर आपके भरोसे के आधार पर वह आपको स्वर्ग देता है। उस पर विश्वास करके उसके मार्ग पर चलने से आप उसका सम्मान करते हैं। अतः उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है स्पष्ट करता है, अनंत जीवन पाने का मार्ग केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही है। 2 तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, प्रिय पुत्र तिमोथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। पौलुस तिमोथियुस को प्रिय पुत्र कहकर संबोधित करता है क्योंकि तिमोथियुस पौलुस के लिए एक महान आनंद का कारण था। फिर वह कहता है, तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। 1 तिमोथियुस के अध्ययन में हमने देखा था कि वहां अभिवादन में दया शब्द आया है जो पौलुस के अन्य पत्रों के अभिवादन में नहीं है। परमेश्वर हमारी योग्यता के अनुसार हमें कुछ न दे तो यह उसकी दया है, वह दंड और दोषारोपण है। पौलुस को दया की बहुत आवश्यकता थी और हमें भी इसकी आवश्यकता है। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु की ओर से यहां जिस बात पर वह बल और जोर दिया गया है वह प्रभु यीशु की प्रभुता है। 2 तिमोथियुस 1 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। तिमोथियुस प्रेरित पौलुस की प्रार्थना सूची में था। जब मैं एक बार पढ़ा रहा था तब अपने विद्यार्थियों से कहता था कि वे पौलुस की प्रार्थना सूची में दिए गए नाम खोजें। वे पौलुस के पत्रों में से नाम खोजकर निकालते थे कि पौलुस किससे कहता है कि वह उसके लिए प्रार्थना करता है। प्रसंगवश क्या आपकी प्रार्थना सूची में प्रचारकों के नाम हैं? कितने हैं? मैं आशा करता हूं कि आपका पादरी आपकी प्रार्थना सूची में अवश्य है। 2 तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। मेरे मित्रों, यह तो स्पष्ट है कि पौलुस तिमोथियुस से प्रेम करता था, परंतु इस पद से प्रकट होता है कि तिमोथियुस भी पौलुस से प्रेम करता था। पौलुस का बंदी बनाया जाना और मृत्यु की आशंका तिमोथियुस पर बहुत प्रभाव डालता है। पौलुस कहता है, तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा करता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। दूसरा तीमुथियुस 1:5 में लिखा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। मेरे मित्रों, पौलुस यहूदी पृष्ठभूमि से था, परंतु युवा तीमुथियुस एक मसीही परिवार से था। उसकी माता और नानी दोनों विश्वासी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मसीह को ग्रहण करने में तीमुथियुस पर उनका गहन प्रभाव पड़ा था। उसका पिता एक यूनानी पुरुष था और स्पष्ट नहीं है कि वह विश्वासी था, परंतु हम इस बात को जानते हैं कि तीमुथियुस एक विश्वासी था और उसने परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन दिया। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
भरोसा कभी ना करना, कल क्या हो?